मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे एक बिल्कुल अनपढ़े प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे प्री एग्जामिनेशन में, उस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आज मैं थोड़ी सी एक बात पर चर्चा करना चाहूंगा, उसका एडिटोरियल कमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। और खासकर ये भारत रशिया चीन और भारत के संबंधों को लेकर है। ये बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है और मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। इस एडिटोरियल का आधार है अभी दो दिन पहले ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, इन सब की स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई। दोनों आपस में मिले और दोनों ने आपस में बातचीत की। इसको आधार बना करके ये एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है। इस एडिटोरियल कमेंट का सार ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारण कैसे करना चाहिए। और वो जो भारत एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि तीन तरफा आशंकाओं या तीन तरफा संकट में फंसा हुआ है, डिलेमा की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति से अपने आप को कैसे निकाले। देखिए, वो भ्रम क्या है। भ्रम यह है कि भारत का झुकाव धीरे धीरे वेस्ट की तरफ होता जा रहा है, पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ होता जा रहा है। और अभी बाइडेन जी के आने के बाद आप यूं कह लीजिए कि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, चाहे वो यूरोप के हों या खुद अमेरिका हो, अमेरिका के नेतृत्व में काम करने को तैयार दिख रहा है। यानी कि जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। ठीक है, अमेरिका से हमारे जैसे संबंध है आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनके साथ जो ट्रेड पैक्ट होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है। तो बाकी संबंध हमारे सब बहुत अच्छे हैं, वहां हमारे जो इमिग्रेंट भारतीय रह रहे हैं वो भारत की शक्ति के लिए काम करते हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दूसरी तरफ रशिया है, रशिया से हमारे बहुत प्राचीन संबंध रहे हैं, बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, लेकिन जब हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ तो रूस की तरफ थोड़ा सा कम होने लगा, लेकिन फिर भी जो डिफेंस है उस क्षेत्र में रूस के साथ हमारे बहुत बेहतर संबंध है, उसको हम रूस को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर रूस और चीन के संबंधों को लेकर के आता है। रूस और चीन के संबंध बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और चीन के भारत के साथ जो संबंध वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तरफ हम और भी देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में एक तरह का द्वंद युद्ध दिखाई दे रहा है, एक अलग किस्म का कोल्ड वार दिखाई दे रहा है ना। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, चीन के साथ तनावपूर्ण है, लेकिन चीन को हम एकदम सीधे सीधे नाराज नहीं कर सकते। हालांकि अभी गलवान घाटी में भारत ने जो स्टैंड लिया वो भारत की ताकत को दिखाता है। ऐसा नहीं कि हम चीन से कोई दबने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सीधे सीधे अवॉइड नहीं कर सकते चीन को भी। इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि रशिया और चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए हुए है। तो भारत अमेरिका का साथ दे करके इस रूप में चीन का साथ नहीं दे, चीन का विरोध नहीं कर सकता कि नहीं हमको तुम्हारी परवाह नहीं है। यह बात अलग है कि भारत बाकायदे क्वाड राष्ट्र का एक सदस्य है ताकि हम चीन की शक्ति को कुछ नियंत्रित कर सकें। तो दोस्तों, ये भारत के सामने भ्रम की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है, वो चौराहे पर खड़ा है कि वो क्या स्टैंड ले, किस तरीके से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करे। इस एडिटोरियल कमेंट में एक बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है और वो दिया है कि भारत को चाहिए कि वो सबसे ज्यादा ध्यान अपने आर्थिक विकास पर लगाए। यदि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में इमर्ज हो गया तो चीन आज जो इतनी बड़ी ताकत बना हुआ है वो आर्थिक शक्ति के दम पर ही बना हुआ है, तब भारत के सामने फिर इस तरह के भ्रम की स्थिति नहीं होगी। और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि भारत को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले 10 वर्षों तक लगातार वो हर साल 8% की जीडीपी की गति से विकास कर सके। और जिस दिन ये अपने में आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा उस दिन फिर भारत को की अनदेखी करने की हिम्मत कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकेगा, फिर चाहे वो चीन हो या रशिया हो। तो बहुत अच्छा ये एडिटोरियल कमेंट है, ये मैं आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी बैकग्राउंड आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है ताकि जब आप उसे पढ़ें तो बहुत अच्छे से तथ्य आपको समझ में आ जाएं। फ्रेंड्स, आइए आज मुख्य विषय पर बात करते हैं। जैसा कि आप सब ने सजेस्ट किया था कि अभी प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के तरीकों पर हम लोग और बात करें, तो दोस्तों मैं आज आपके इसी सजेशन का सम्मान करते हुए आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर का जो डी सेट है उसके 14वें प्रश्न की बात कर रहा हूं, 13 तक की हम लोग बात कर चुके हैं। 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न की खासियत यह है कि यह प्रश्न आपको कहीं सीधे सीधे पढ़ने को नहीं मिलेगा। दूसरी खासियत यह है कि इसका उत्तर भी आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा। तीसरी खासियत यह है कि यह इसका उत्तर ढूंढ पाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम तो करना पड़ेगा। प्राणायाम करने का मतलब है कि दिमाग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप बहुत चलताऊ तरीके से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप मान करके चलिए कि आप गच्चा खा जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। जो पहला स्टेटमेंट है, देखिए क्या है कि पिछले दशक में, दशक का मतलब है 10 साल, एक दो साल की बात वो नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 10 साल की। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। तो क्या आपको इसके लिए डेटा की जरूरत है कि भारत और श्रीलंका के 10 साल का व्यापार कितना रहा है, उसमें वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, कमी हुई है? और अगर श्रीलंका का आप जान भी लेंगे तो कितने देशों के बारे में जानेंगे? लगभग 200 देश है, पता नहीं किसके बारे में पूछ लिया जाए। आप कह सकते हैं कि भाई चले पड़ोसी देश है इसलिए पूछ लिया गया हो, तो पड़ोसी भी बहुत से देश हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसे अब हल कैसे करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है दशक, याद रखिए। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। अब आप देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में, ठीक है, इसमें दशक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और इन्वर्टेड में दिया है कपड़े और कपड़े से बनी चीजों, ठीक है, का व्यापार प्रमुख है, यह बांग्लादेश के साथ है। हो सकता है कि यह तथ्य आपको पढ़ने को मिल जाए। बांग्लादेश और भारत के जब आप व्यापारिक संबंधों के बारे में कहीं कोई लेख पढ़ेंगे तो उसमें कहीं आपको यह स्टेटमेंट मिल जाए इसके बारे में। तीसरा स्टेटमेंट है कि पिछले 5 वर्षों में, अब आप देखिए कि फिर से 5 वर्ष, पहले में 10 वर्ष थे, इसमें 5 वर्ष। आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपसे चूक हो जाएगी। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो यहां हम 3 देशों के बारे में देख रहे हैं फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल, है ना। दक्षिण एशिया में छोड़ दीजिए, मतलब दक्षिण एशिया को पूरा एरिया ले लिया और उसमें नेपाल को सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में कह रहा है। और इस टॉपिक का पूरा संबंध हमारे विदेशी व्यापार से है। अब इसका क्लू कहां से निकलेगा, मतलब वो कौन सा धागा होगा जिसे पकड़ करके आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे? अब आप देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है। अब आपको देखना यह होगा कि पिछले कुछ सालों से इन देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो किस तरीके के रहे। ओवरऑल अगर हम भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में सोचेंगे तो लगभग 10 सालों पर हमें जाना होगा, क्योंकि देखिए जब आपके किसी देश से संबंध खराब हो जाएंगे तो फिर व्यापार अच्छा नहीं हो सकता, और अगर संबंध अच्छे हैं तो व्यापार अच्छे होने की संभावना हो सकती है। जरूरी नहीं कि व्यापार अच्छा ही हो, लेकिन मतलब बढ़ गया हो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक संभावना हम लेकर के चल सकते हैं। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल में भारत और श्रीलंका के संबंध किस तरीके से रहे हैं। क्या आपको कोई क्लू मिल सकता है, जानने की कोशिश कीजिए। जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी कुछ बातें पकड़ में आएंगी, और मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, आप लोग इस पर थोड़ा सा काम करें। इसके बाद है दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच इनके संबंध कैसे रहे, भारत और बांग्लादेश के बीच, यह आपको जानना होगा। और फिर जब आप जान लेंगे तो फिर यह देखना होगा कि व्यापार में कौन सी चीज प्रमुख है। हो सकता है कि व्यापार में कौन सी चीज प्रमुख है हम ना पकड़ पाए, सीधे सीधे नहीं पकड़ पाएंगे, उसका कारण यह है कि भारत भी कपड़े का बहुत अच्छा, मतलब जूट वगैरह भारत में काफी होते हैं, कपड़े का निर्यात करता है भारत, और जूट का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में भी गया है विभाजन के बाद, और कपड़े के मामले में बांग्लादेश भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर अब भारत से वो क्यों कपड़ा मंगाएगा, या भारत बांग्लादेश से क्यों कपड़ा मंगाएगा, तो ये द्वंद्व आपके दिमाग में हो सकता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता निकलेगा तो हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में सोचेंगे। और ठीक इसी पैटर्न पर तीसरे स्टेटमेंट में आएंगे, और तीसरे स्टेटमेंट में हम भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में सोचेंगे, और वो भी पिछले 5 सालों में। इन तीनों राष्ट्रों के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, इनके बारे में आप विचार करें, और विचार करने के आधार पर फिर जो विकल्प दिए गए हैं ABCD, उन विकल्पों में जो खेल दिखाई दे आपको, उस खेल के साथ खेलने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि सही उत्तर तक पहुंच जाएं। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि इस प्रश्न को सॉल्व करना उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो कुछ ही महीनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि यह प्रश्न कोई बहुत कठिन प्रश्न होना चाहिए। लेकिन आप सब इन पर विचार करें दोस्तों, मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं, आप सब अपने अपने उत्तर मुझे लिख करके भेजें, आगे हम लोग इस पर बातें करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनिकेश बनवाल, दीप शिखा चक्रवर्ती हटा मध्य प्रदेश से, अमित कुमार सिंह, सौरभ प्रताप दिल्ली से, रोहिताश, नरेंद्र कुमार कुशवाहा, उमेश तालेकर, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, और रवीना रे हाजीपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।